प्रभुपाद की। शंकरार्थ श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 10 श्लोक उच्चारण करेंगे। अलक्षितास्मिन् रहसि मामकेरपि गोगजे कुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वातन सुर्वतम्। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोगजे कुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वातन सुर्वतम्। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोगजे गुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वासन पूर्वकम्। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोगजे गुरु द्विजाति संस्कारम् अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोगजे गुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वासन पूर्वकम्। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोगजे गुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वासन पूर्वकम्। मामकैरपि गोगजे गुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वाचन माताजी श्रीनन्द अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीनन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोगजे गुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। हरे कृष्ण श्रीनन्दवास अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोगजे गुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वासन पूर्वकम्। हमसे श्लोक का उच्चारण में थोड़ा गलती हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। श्रीनन्दवास अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोगजे गुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वासन पूर्वकम्। श्री नन्दोवाच छोड़ दीजिए, क्षमा दीजिए। ठीक है, शब्दार्थ इस प्रकार से है, श्री नंद उवाच, नंद महाराज ने गर्ग मुनि से कहा, अलक्षितः कंस के जाने बिना अस्मिन् इस रहसि एकांत स्थान में मामके यहाँ तक कि मेरे संबंधियों द्वारा अपि इससे भी एकांत स्थान गोब्रजे गोशाला में गुरु संपन्न कीजिए द्विजाति संस्कारम द्विज बनने का संस्कार संस्कारात् भवेत् द्विजः स्वस्ति वाचन पूर्वकम् संस्कार करने के लिए वैदिक स्तोत्र के उच्चारण द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। नंद महाराज ने कहा, हे मुनि हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कम से संस्कृत होता तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चारण करें और मेरे घर की इस गौशाला में ही यह वीर संस्कार पूरा करें, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए, क्योंकि यह संस्कार आवश्यक है। तात्पर्य, नंद महाराज को संस्कार टालने की बात अच्छी नहीं लगी। अनेक अवरोध के बावजूद वे चाहते थे कि गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाया जाए और जो आवश्यक हो उसे किया जाए। यह संस्कार ब्राह्मणों क्षेत्रियों तथा वैश्यों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है और चूंकि नंद महाराज वैश्य थे इसलिए यह संस्कार अनिवार्य था। पूर्व काल में ऐसे कर्म अनिवार्य थे, चातुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म व्यावसह, इन संस्कारों के बिना समाज पशुओं का समाज बन जाएगा। गर्ग मुनि की उपस्थिति से लाभ उठाने के लिए नंद महाराज नामकरण संस्कार को बिना तड़क भड़क के गुप्त रूप से ही संपन्न कराना चाह रहे थे। अतः संस्कार के अवसर को मानव समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए, किंतु कलयुग में लोग इस अनिवार्यता को भूल चुके हैं। मंद असमंद मतयो मंद भाग्य पुत्ता, इस युग में लोग बुरे और अभागे हैं। वे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वैदिक आदेशों को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु नंद महाराज किसी बात की अपेक्षा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सुखी समाज को आध्यात्मिक ज्ञान में उत्पन्न बनाए रखने के लिए गर्ग मुनि की उपस्थिति का पूरा लाभ आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उठाया। 5000 वर्ष के भीतर समाज कितना पतित हुआ है। मंदासमुंद मतयो मंद भाग्या, मनुष्य जीवन लाखों जन्मों के बाद मिलता है और यह शुद्धि या संस्कार के निमित्त होता है। प्राचीन काल में पिता अपने संतानों को ऊपर उठाने के लिए सभी प्रकार से सहायता करने में उत्सुक रहता था, किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चों तक का वध करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उन्हें बच्चों का पालन पोषण का उत्तरदायित्व न लेना पड़े। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन रूपं स्वयं रूपदानीयं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी हे देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धवैव सह पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृते नमः ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सारे भक्तों को थोड़ा संकोच होता रहेगा कौन आके बैठ गया व्यास सामने में। तो हमारा आज पहला भागवतम क्लास है। हम पहले कभी क्लास नहीं देते थे। दयामूर्ति प्रभु की आज्ञा से हमारी ये सेवा का लाभ उठाना चाहे हैं और खास करके हम सारे वैष्णव भक्तों से विनती करते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमारी ये प्रवचन या इस क्लास में कुछ त्रुटियां रहेगा तो क्षमा कर देंगे। सारे वैष्णव सब सीनियर हैं, यहाँ पे मैं अकेला जूनियर हूँ। तो सारे वैष्णव से प्रार्थना है कि कोई गलती त्रुटि रहेगा तो उसको सीरियसली ना लें और उसके ऊपर कमेंट दे के मुझे सुधार सकते हैं। तो खास करके हम ये विराट रूप का प्रदर्शन जो भगवान ने इस अध्याय में करेंगे आगे जाके, ये अध्याय शुरुआत हो चुका है। हम कुछ लोगों पहले चर्चा कर चुके हैं कि नंद महाराज के घर पे गर्ग मुनि आए वसुदेव के निवेदन से, और गर्ग मुनि आते ही नंद महाराज ने उनको बहुत ही आदर पूर्वक उनका सत्कार किए हैं। यही होता है, एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि कोई साधु संत अगर घर पे आए तो उनके बहुत ही आदर प्रेम पूर्वक उनका सत्कार करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर गर्ग मुनि जो है वो बिना बताया है, नंद महाराज को पता नहीं था कि गर्ग मुनि आने वाले, वसुदेव जी भेजे थे उनको मगर नंद महाराज को पता नहीं था। अचानक से गर्ग मुनि और उनके शिष्यों को देख के नंद महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए। अतिथि जो है बिना तिथि का ही आते हैं, ऐसा नहीं कि फोन करके आएंगे हम आने वाले हैं कल करके, ये आइटम्स बना के रखिएगा मेन्यू, ऐसा नहीं होता है। अतिथि का अर्थ ही है कोई तिथि नहीं, कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर गर्ग मुनि ने बिना बताए वसुदेव की निवेदन से यहाँ पे नंद महाराज के राजमहल में आए कुटीर में, और नंद महाराज देखते ही बहुत ही प्रसन्न हो गए। बोले कि वाह क्या सौभाग्य है मेरा, ऐसे महान संत मेरे घर में पधारे हैं मुझे आशीर्वाद करने के लिए, और उनको बहुत ही आदर पूर्वक उनका सत्कार किए, उनका चरण धोए और उसका चरण का जल उसको आस्वादन किए। और करने के बाद नंद महाराज ने पूछते हैं कि हे साधु हे महात्मा, आप तो सारे ज्ञान से पूर्ण हैं, आप दिव्य ज्ञानी हैं, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, हम पहले श्लोक पढ़े थे, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है आप, मैं आपका किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ, ऐसा तो मेरा योग्य नहीं है आप जैसा महान संत का सेवा करने का, फिर भी मेरे लायक कुछ सेवा है तो आप बताइए। और इस प्रकार पूछने के बाद नंद महाराज ने गर्ग मुनि से कहते हैं कि आप आए बहुत ही सौभाग्य है मेरा, बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे घर पे दो नन्हे नन्हे नटकट कृष्ण बलराम प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो आपने आए बहुत अच्छा काम किए कि आप आए तो आए, मेरे दोनों पुत्र को नाम संस्कार नामकरण करके ही जाइए। ये सुनकर गर्ग मुनि ने बोले कि हे नंद महाराज, मैं आपका कुल पुरोहित हूँ, अगर मैं आपकी दोनों बच्चों को नाम संस्कार करूंगा तो ये बात किसको पता चलेगा, कंस को पता चलेगा। और कंस कितना बड़ा साधु था ये पिछले वाले श्लोक में बंगाली को बताए थे, उनका सारे गुण, कितना सुंदर व्यक्ति था, कितना सज्जन व्यक्ति था, वो पिछले श्लोक में बताया गया है। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा पापी था, और उसको ये भी पता था कि आठवां संतान लड़का ही होना चाहिए था, लड़की नहीं होना चाहिए था, उसको पहले से डाउट है कि कृष्ण कहीं पे जन्म लिए हैं करके, उसको अभी तक पता नहीं है। जैसे कि तृणावत आए थे, पुतना आए थे, उन्होंने सिर्फ डाउट डाउट हुआ कि कहीं पे है करके उन्होंने भेजे थे उनको कि जाइए जितना भी बच्चे सबको मार दीजिए, मगर उनको ये पता नहीं था कि कृष्ण नंद बाबा के घर पे पाल पोस रहे हैं, बड़े हो रहे हैं करके। तो यहाँ पर गर्ग मुनि बताते हैं कि कंस बहुत ही बदमाश व्यक्ति है, बहुत ही पापी है, और अगर उसको पता चलेगा हम लोग इतना धूमधाम से ये नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को ये बात पता चल जाएगा कि गोकुल में किसी का नामकरण संस्कार वो भी इतना धूमधाम से हुआ और मेरे द्वारा हुआ। गर्ग मुनि जो कि कुल पुरोहित थे, मेरे द्वारा हुआ करके ये सुनेगा तो उसको इतना कन्फर्म हो जाएगा कि ये कृष्ण ही है जो मुझे मारने वाला है। इसीलिए गर्ग मुनि उनको बोलते हैं कि नंद महाराज को कि हम इनको ना करें, इस प्रकार से वो बताते हैं कि ये पता चल जाएगा। तो ये सुनकर नंद बाबा ने आज का श्लोक बता रहे हैं कि हे मुनि, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस संस्कृत होगा तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चारण करे और हमारा घर का जो गौशाला है वहां पे उनका नाम संस्कार कर दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सीक्रेटली बहुत गुप्त रूप से, यहाँ तक कि मेरे भाई को भी पता ना चले, मेरे सगे संबंधी कोई भी नहीं, रहस्य एकदम रहस्यपूर्ण रहस्यपूर्वक हम लोग उसको संपन्न कर लेंगे। यहाँ तक कि गौशाला का गेट बंद कर दूंगा मैं, कोई वर्कर्स भी नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ आप रहेंगे और हम लोग रहेंगे, बस हम नाम संस्कार कर देंगे करके। इस प्रकार से इस श्लोक में नंद बाबा ने बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक लाइन को बहुत ही जोर दे रहे हैं कि अनेक अवरोधों के बावजूद वे चाहते थे कि गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाएं, वो चाहते थे कि साधु का उपस्थिति का लाभ उठाने के लिए, कौन, नंद बाबा ने। ये लाइन को प्रभुपाद जी 3 बार कोट किए हैं पर्पस में कि नंद बाबा ने गर्ग मुनि का उपस्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। इसीलिए हर गृहस्थ को चाहिए जैसे ही साधु का संग हो उसके पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं कि साधु को मिलते ही कि प्रभु जी मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस में ये हो गया है, मेरा पत्नी बहुत मारती है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। साधु मिलते ही क्या पूछना चाहिए, उनको दिव्य ज्ञान का और उनसे कुछ लाभ हमारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर नंद महाराज बोलते हैं कि मेरे पुत्रों का नाम संस्कार कीजिए, ये आध्यात्मिक है, नाम संस्कार करना, ये नामकरण करना, ये खास करके सारे भक्तों को ये संस्कार करना चाहिए। जितना भी वेद शास्त्रों में संस्कार वगैरह बताया गया है ये हमारे भक्तों को खास करके सबको तो करना ही चाहिए, खास करके भक्तों को तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए तो सारा ये छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, हमको इस विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा क्योंकि हम वैदिक भक्त हैं। कोई अगर भाव भक्ति में आ गए या प्रेम भक्त बन गए, प्रेम के स्तर तक आ गए तो उनको ये सब विधि विधान का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, मगर हम विधि वैदिक भक्ति करते हैं, है ना, तो इसीलिए हमको साधन भक्ति के स्तर पे ये सब विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भक्ति में उन्नति नहीं होगा। इसलिए नंद महाराज यहाँ पे निवेदन करते हैं कि हे मुनि, आप मेरे दोनों पुत्रों को नामकरण संस्कार कीजिए और कहाँ पे, बहुत ही सीक्रेट जगह है, मेरे घर पे ही है गौशाला, वहां पे कर लेते हैं। गौशाला क्यों चुने, क्योंकि गौशाला पहले से पवित्र रहता है, उसको ऊपर से पवित्र करने का जरूरत नहीं रहता है। जैसे कि हम कुछ हवन वगैरह करते हैं या घर में शुद्धि के लिए गोबर का लेप करते हैं, यहाँ तक कि मुंबई में तो सब मार्बल का घर हो चुका है, मगर गाँव में अभी भी जाएंगे तो घर में सब गोबर लेपते हैं, मिट्टी का घर होता है और गोबर लेपा जाता है, तो गोबर बहुत शुद्धि माना जाता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसीलिए नंद बाबा ने कौन सा जगह चुने, गौशाला चुने, यहाँ पे जाएंगे तो दूसरा कुछ पवित्र के लिए कुछ अलग सा यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, ये पहले से ही पवित्र है, जहाँ पे गाय है और जहाँ पे गोबर है जहाँ पे, वो पहले से ही पवित्र है। तो इस प्रकार से नंद बाबा ने उनको बताया कि हम सीक्रेटली या रहस्य रूप में हम इसको संपन्न कर लेते हैं। अलग सीतो मीन्स नंद बाबा ने बोलते हैं कि आपको अगर ऐसा शंका हो रहा है कि कम से कम पता चल जाएगा तो हम ऐसे करते हैं, इसको गुप्त रूप से करेंगे ताकि ये गांव में भी किसको पता ना चले, सिर्फ आपको पता चलेगा और हमको पता चलेगा और दूसरी को किसी को नहीं। हाँ होता है ना, कोई बात अगर फैलना रहता है तो गांव में अगर कोई व्यक्ति को पता चल जाएगा तो दूसरे को बता देगा, तीसरे को बता देगा। खास करके माताओं को कभी सीक्रेट बात नहीं बताना चाहिए। वो ऐसे पता चल भी गया तो ऐसा फैलेगा, आपकी तरह फैलेगा होगा। अगर आपको कोई बात फैलाना रहेगा ना, कोई माता जी को बता देना, बोला माता जी ये सीक्रेट बात है, किसी को मत बताना, ऐसे बोलने का, किसी को मत बताना। तो राजी मैं किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ एक दो दिन के अंदर वो बात ऐसे फैलेगा आपकी तरफ, हाँ सारे जगह फैल जाएगा। हाँ ये अपना युधिष्ठिर महाराज का श्राप ही है कि माताएं कोई सीक्रेट बात छुपा नहीं सकते, तो तुरंत बता देते हैं। हाँ तो इसलिए माताओं में, माताओं से कभी सीक्रेट बात नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा ने बोले कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, हम अपने ही गौशाला में संपन्न करेंगे। और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि नंद बाबा ये बताना चाहते हैं कि हम ढोल वगैरह फटाका फोड़ के इतना धूमधाम से नहीं करेंगे। हाँ ये जन्म ये नामकरण संस्कार का हम लोग एकदम सीक्रेट, आप मंत्र उच्चारण कीजिए, हम गौशाला में जाएंगे और नाम संस्कार हो जाएगा दोनों का। इस प्रकार से नंद बाबा बताते हैं। हाँ अस्मिन रहसी मामकेर मीन्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यहाँ तक कि मेरे भाई, हाँ मेरे सगा भाई उसको भी पता नहीं चलेगा। हाँ इस प्रकार से हम उसको संपन्न कर लेंगे गोब्रजे मीन्स गौशाला में। द्विजा के संस्कार यहाँ पे गोपा जी शब्दार्थ में इस प्रकार बताते हैं, द्विजा के संस्कार मीन्स द्विज बनने का संस्कार, संस्कार भवे द्विज। हाँ संस्कार से द्विज बनते हैं। और गोपा जी तात्पर्य में बताते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण और कर्म, गुण कर्म से द्विज बनते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और थ्रेड पहन लिया तो वो ब्राह्मण नहीं माना जाते, जब तक उसका गुण और कर्म ब्राह्मण का नहीं होता है। तो उपाधि बताते दो पैसे का सुतली से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। हाँ इसलिए ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको संस्कार चाहिए और उसके लिए क्या है, गुण और कर्म भी होना चाहिए। ऐसा किसी कोई भी व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण दावा करता है तो ऐसा हम उसको ब्राह्मण नहीं मान सकते, उसके पास ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। भले ही थ्रेड नहीं रहेगा ब्राह्मण जैसा, वो उसका वेशभूषा भी नहीं रहे, मगर अगर उसका आचरण, उसका गुण और उसका कर्म ब्राह्मण जैसा है। ब्राह्मण का गुण भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, समा दमा तपस्व शांति आर्ज, ये सब ब्राह्मण का गुण है। ये सब गुण अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो असलियत में ब्राह्मण है, ना कि वो जन्मजात ब्राह्मण। ऐसे तो होते हैं जन्मजात ब्राह्मण और एक दूसरा जो जन्म संस्कार होने के बाद ब्राह्मण होते हैं, दो प्रकार का। मगर जन्मजात ब्राह्मण भी अगर ब्राह्मण का गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं है। वो कौन सा श्लोक है, चंडालोपी द्विजे श्रेष्ठ, चंडालोपी द्विजे श्रेष्ठ हरिभक्त, हरिभक्ति परायण, हरिभक्ति बिना, हरिभक्ति बिना सस्य द्विजोपि स्वपत अधम। यहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई चंडाल कुल में भी जन्म लिया है, अगर उसने हरि का भक्ति किया, अगर हरि का भक्ति किया तो वो क्या है, द्विज माना जाएगा, ब्राह्मण माना जाएगा। अगर कोई द्विज, कोई ब्राह्मण अगर उसने हरि भक्ति का ग्रहण नहीं करता है, उसका आचरण ठीक नहीं है, उसका गुण कर्म ठीक नहीं है, तो क्या है, स्व पच अधम मीन्स, स्व मीन्स कुत्ता, पच अधम कुत्ता खाने वाले से भी नीच माना जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण गुण और कर्म से नहीं होता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो खास करके भगवान का भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नंद महाराज भक्त थे और भक्त थे साथ में गृहस्थ थे और उनका कर्तव्य था कि अपने बेटों का नाम संस्कार करें, इसलिए उन्होंने निवेदन करते हैं कि मेरा पुत्रों का नाम संस्कार करें। तो ये भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति करेंगे तो बोलते हैं कि सारा देवताओं का गुण अपने पास आ जाता है। ये भक्ति इतना श्रेष्ठ है। भक्ति इतना श्रेष्ठ है, अगर एक यहां तक बताया गया है कि तन्नाम ध्येय सवनाम कीर्तनाद, यत् पवनाद यत् स्मरणाद अपि क्वचित, स्वादो अपि स्व अधोपि साध्य सवनाय कल्पते कुतो पुनस्ते भगवान सुदर्शनाद। उस महान भक्तों का क्या कहना है जो भगवान को साक्षात दर्शन किए हैं। अगर कोई कुत्ता खाने वाला अधम व्यक्ति भी भगवान का नाम को एक बार भी अपने जीभा में लेता है, एक बार भी उसका श्रवण करता है, और एक बार भी भगवान को प्रणाम करता है, और एक बार भी अगर उसने भगवान का नाम स्मरण भी कर लेता है, तो उसने क्या है, सवनाय कल्पते, सारे दैविक यज्ञ करने का योग्य बन जाता है। इतना महत्व है भगवान का भक्ति, भगवान का भक्ति और भगवान का नाम। तो इस प्रकार से नंद महाराज यहाँ पे बताते हैं कि हमको ये नामकरण संस्कार करना पड़ेगा, और संसर्ग संस्कार कैसे होता है, संस्कारात भवेत बीज, संस्कारात भवेत बीज, बीज बनने के लिए व्यक्ति को संस्कार चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से नंद महाराज उनको निवेदन करते हैं, और खास करके हमको जैसे ही साधु का संग मिले उसको बिना प्रगल्प किए उसका लाभ उठाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में आते ही तुरंत शुरू कर देते हैं, वो भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है। साधु संग का बात दूर है, हम लोग आते हैं किसके लिए, मंदिर में आते किसके लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, कथा कीर्तन सुनने के लिए। मगर हमारा काम क्या होता है, कुछ दूसरा कार्य में लग जाते हैं। आते ही ये भक्त ने ऐसा किया, वो भक्त ने ऐसा किया, वो भक्त हर जगह में गलतियां ढूंढते हैं। बाहर दुनिया में तो हम यही सब करते हैं ना, हम लोग बाहर दुनिया में क्या करते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, यही करते रहते हैं। और अगर मंदिर में भी आके यही करेंगे तो कैसे आध्यात्मिक उन्नति होगा, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, नहीं होगा। इसीलिए हमको बहुत ही सतर्क होना चाहिए। हमको लगता है कि ये मंदिर एक ईंट पत्थर से बना हुआ 12-15 साल का मंदिर है, एक घर है, एक मंदिर है, ईंट पत्थर से बना हुआ नहीं। जहाँ पे भगवान और उनके भक्त होते हैं वहां वृंदावन होता है, वो धाम होता है, उसको ध्यान पे रखना चाहिए। हम लोग उसको इतना छोटा नहीं समझना चाहिए, भक्त और भगवान और उनके मंदिर को बहुत ही, देखो हमारे हमको कितना कृपा है, खास करके भगवान का, भक्तों का, श्री प्रभुपाद जी का। अगर जो भक्ति रसामृत सिंधु में 64 विधियां बताया गया है भक्ति का, विधि भक्ति और साधन भक्ति का 64 विधि बताया गया है। अगर कि कोई व्यक्ति ने मंदिर का सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता है तो उसका 64 विधि ऐसे ही संपन्न हो जाता है। देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने इसको एकदम ये किए हैं, रचना किए हैं इस मॉर्निंग प्रोग्राम। कोई अगर मंगलारती से लेके भागवतम क्लास एंड तक कोई रहा प्रसाद के पास, प्रसाद तो नहीं मिलता है भागवतम के पास, क्षमा कीजिए, सारे फुल टाइम डिवोटीज के लिए प्रसाद है, तो उनका 64 विधि ऐसे ही संपन्न हो जाता है, प्राय संपन्न हो जाता है। तो देखिए कितना कृपा है, हमको आभारी होना चाहिए भक्तों के प्रति। हमको भक्तों का, देखिए जब तक भक्तों का निंदा नहीं छोड़ते हैं तब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, क्योंकि हम जितना भी नाम जप करेंगे, जितना भी कथा कीर्तन सुनेंगे, मगर एक ही चीज से सारा चीज नष्ट हो जाता है, वो है भक्तों का निंदा। भक्तों का निंदा बहुत बहुत खतरनाक है। यहाँ तक बताया गया कि एक पागल हाथी होता है ना, उस प्रकार है। एक पागल हाथी क्या करता है, अगर किसी बगीचा में घुसेगा क्या करेगा, सारा ध्वंस कर देगा उसने, सारा बगीचा ध्वंस कर देगा। इस प्रकार से हमारा भक्ति, जो भक्ति का थोड़ा बहुत उगा हुआ है, वो कैसे नष्ट हो जाता है, ये वैष्णव अपराध से नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम भक्तों को बहुत ही ध्यान पूर्वक, खास करके मंदिर में जब आते हैं, हर व्यक्ति के अंदर गलतियां ना ढूंढे। देखिए गलतियां तो, क्योंकि बताया गया कि कलो दोषो निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, यहाँ पे गलतियां ही गलतियां हैं। मगर हम भक्तों के अंदर भी गलतियां ढूंढेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रगति नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, ये वैष्णव अपराध से खास करके बहुत ध्यान रखना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और जैसे ही साधु का संग मिलेगा वैसा ही उनका साधु संघ का लाभ उठाना चाहिए, साधु संघ का लाभ, जिस प्रकार यहाँ पे नंद महाराज ने पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। पता नहीं फिर से यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके टीका में बताते हैं कि नंद महाराज ऐसे बता रहे हैं कि पता नहीं फिर से कब यह अवसर मिलेगा, ऐसे साधु को कब आएंगे मेरे घर पे, अब आए ही हैं तो नामकरण करके ही जाइए, कुछ भी हो जाए। इतना संकट बता रहे हैं गर्ग मुनि की, इस प्रकार से अगर हम ये करेंगे नामकरण तो कम से कम पता चल जाएगा, और वो आके कृष्ण को मारने के लिए प्रयत्न करेगा। इतना खतरा होने पर भी नंद महाराज क्या बोलते हैं, साधु संघ का लाभ उठाना ही चाहते हैं, साधु संघ का लाभ उठाना ही चाहते हैं। इसीलिए हमको जैसे ही साधु संघ होता है वैसे ही उनका लाभ उठाना चाहिए। हम लोग मिलते ही शुरू कर देते हैं प्रगल्भ, है ना, तो प्रगल्भ से बचना चाहिए। प्रगल्भ क्या है? कृष्ण कथा छोड़ के बाकी सारा चीज प्रगल्भ है। कृष्ण, कृष्ण संबंधी और कृष्ण भक्त संबंधी कथा छोड़ के और जितना भी चीजें और सब चीज क्या है, प्रगल्भ में जाएगा। इसीलिए खास करके हम भक्तों को हम अगर हम मंदिर में आके ऐसा करेंगे, कोई नया व्यक्ति आके क्या सुनेगा, अरे ये धोती कुर्ता पहनाया, तिलक लगाया है, कंठी माला पहना हुआ है, यहाँ तक कि टकला भी हुआ है, साधु दिखता है अंदर से, मगर बाहर से देखता है वो भक्त के बारे में बोल रहा है, वो भक्त के बारे में बोल रहा है, तो बहुत ही बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है ना। इसीलिए हमको जहां तक हो अगर किसी भक्त के प्रति कोई आपका कुछ मतभेद हुआ है तो वो भी नंद महाराज जैसे सीक्रेटली बात कीजिए, ऐसा खुला बात मत कीजिए, है ना। सीक्रेटली करेंगे तो आपस में तालमेल जमेगा, नहीं तो क्या होता है हम उसके बारे में दूसरे को बताएंगे, वो जाके बोलेगा कि वो भक्त ने उसके बारे में ऐसे बोला, और उसने जाके दूसरे को बताया कि वो भक्त ने उसके बारे में ऐसा बोला। इसी प्रकार एक ये एकदम बैड इंप्रेशन श्रुति होगा। और हम तो अपराध कर ही रहे हैं, साथ साथ में लाखों लोग को अपराध करने के लिए जोड़ रहे हैं हम लोग। हमारा आंदोलन है कृष्ण भक्ति में जोड़ना, यहाँ ना कि अपराधों में जोड़ने के लोगों को। इसलिए इससे बहुत बचना चाहिए, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि साधु का संगति का लाभ उठाना चाहिए और उनका कभी अवगुण, देखिए अवगुण सबके अंदर है, मगर कैसे होना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। अगर कहीं गंदा चांदी मिल जाता है वहां पर कोई फूल उगा हुआ है तो उसमें जाके क्या करेगा, मधु को ग्रहण करता है ना, मधु को लेता है। उसी प्रकार हंस का उदाहरण लेते हैं हम, हंस भी अगर हंस को दूध और पानी मिक्स करके दे देंगे ना, वो सारा दूध को पी लेगा और पानी का पानी छोड़ देगा। तो भक्तों को ऐसे होना चाहिए, मधुमक्खी देता इतना, देखिए बाहर तो अवगुण है और मंदिर में क्या अवगुण है, कोई अवगुण है ही नहीं, ये हमारा भ्रम है। मंदिर में अवगुण देखते हैं तो ये हमारा भ्रम है, ये हमारा गलती है। कोई कैदी है, उसने अगर जेल के अंदर बोलता है कि उसने डकैती किया है, उसने चोरी किया है, उसने इस प्रकार लूटा है, उसने किसी का खून किया है, आप क्या कर रहे हैं जेल में, कोई कैदी इस प्रकार बोल रहा है कि वो उसने वैसे किया वैसे किया इस जेल क्या है, तो आप क्यों आए जेल में, आपने भी कुछ अपराध किया इसलिए तो जेल पे आए हैं ना। इसी प्रकार सारे लोग अपराधी हैं, सारे लोग के पास अवगुण भरा हुआ है, तो हमारे तरफ देखते ही नहीं, झकते एक बार झक के देखो, पूरा ऐसे लगेगा कि पूरा अवगुण तो मेरे अंदर है, मैं दूसरे को क्यों देख रहा हूं, है ना। हम देखते हैं दूसरे का अवगुण, इसीलिए कि पहले अपने को झाके, हम अगर किसका अवगुण देख रहे हैं इसका मतलब आपने आपका अंदर है अवगुण, इसलिए आपको पता ही कैसे चला अवगुण, क्योंकि ना आपका अनुभव हुआ है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मीन्स क्या है, और नॉलेज होना, विज्ञान मीन्स उसका अनुभव होना, है ना, अनुभूति होना, क्यों आप ज्ञान विज्ञान दोनों अनुभव किया है आपने, इसलिए तो दूसरे का अवगुण देख रहे हैं। इसलिए ये अवगुण देखना, जब हम अवगुण देखना बंद कर देंगे ना, हर जगह हमको गुण ही दिखेगा, हर जगह गुण दिखेगा, है ना। इसलिए अवगुण देखना बंद करना चाहिए भक्तों को, और खास करके अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस स्थिति में हूं, मेरा क्या कमियां हैं, मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूंगा, और उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, उसके लिए साधु को मिलना चाहिए, और मंदिर को साधारण नहीं समझना चाहिए। और सारे भक्तों को हम बहुत ही आभारी हैं, कितना मेहनत करके मंदिर बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं बताइए, हमारे लिए बना रहे हैं ना, हम आके अच्छे से मंगलारती में संध्या आरती में इतना मच्छर काटते हैं हमको, है कि नहीं, इतना अच्छा मंदिर बन जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास दरवाजे रहेंगे तो कोई मच्छर नहीं आएंगे अंदर, है ना, फर्स्ट क्लास हम लोग नाच सकते हैं गौर आरती में, है कि नहीं। और आवाज जाता है घर के बाजू वाला कंप्लेन करते हैं पुलिस में जाके, अब अच्छा मंदिर बनेगा, फर्स्ट क्लास मंदिर बनेगा तो आवाज बाहर नहीं जाएगा, हम लोग कीर्तन मंगलारती में भी माइक में कीर्तन कर सकते हैं जोर जोर से, है ना। तो ये सब क्यों कर रहे हैं भक्त लोग, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत करके कमल प्रभु बनवाली प्रभु वगैरह क्यों इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं मंदिर के लिए, हमारे लिए ले रहे हैं, हम कैसे अच्छे से भक्ति करेंगे, है, हमारा भक्ति में ऐसा अवरोध हो रहा है कि कोई कीर्तन होता है तो बाजू वाला कंप्लेन करता है, तो हम लोग कीर्तन में आना चाहते हैं तो मच्छर काट रहा है, भागवतम क्लास में नींद आ रहा है कि नहीं। तो ये सब हमारा प्रॉब्लम इतना सारा, इसको सॉल्व करने के लिए भक्त लोग प्रयत्न कर। इसीलिए नंद महाराज ने पिछले श्लोक में बताते हैं कि हे गर्ग मुनि, हे महामुनि, साधु का कार्य ही यही है, क्या है, दूसरे का हित करना है ना, दूसरे का हित, अपना हित के बारे में नहीं सोचेंगे साधु, कैसे दूसरे का हित, हाँ पर दुख दुखी है ना, पर दुख, अगर दूसरे का दुख देख के साधु एकदम दुखी हो जाते हैं, बेचारा कितना दुख भोग रहा है, भौतिक संसार क्यों जा रहे हैं साधु लोग, इतना ये मैराथन क्यों हो रहा है बताइए, क्योंकि ये ज्ञान को हर जगह पहुंचाएंगे, जिस गधे कुत्ते के पास ही पहुंचना चाहिए ज्ञान, हाँ गधे कुत्ते में क्या है, जो शास्त्रों को नहीं जानते हैं, पशु जीवन, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं ना, पशु जीवन जी रहे हम लोग, प्रभुपाद जी इतना मेहनत करके क्यों गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे तो इंडिया में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में बैठ के फर्स्ट क्लास जपा कर सकते थे, भजन कर सकते थे, मगर इतना मेहनत करके, हाँ दो तीन बार दिल का दौरा पड़ा, इतना मेहनत करके जहाज में, अभी पानी का जहाज, दो तीन दिन लगा उनको, इतना मेहनत किसके लिए की, किसके लिए, पापी लोग के लिए ना, ये जो कुत्ते जैसा जी रहे हैं, पशु जीवन जी रहे हैं, उन लोग कैसे सुखी हो सकते हैं भगवत भक्ति करकर। ये मैराथन का भी यही उद्देश्य है कि कैसे एक व्यक्ति को ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होगा। लोग कहीं जगह इस प्रकार से है कि लोगों को पता नहीं ये ज्ञान, जैसे कि मिले बाहर देश में लोगों को पता नहीं कृष्ण क्या होता है, राम क्या होता है, जगन्नाथ पता नहीं था, मगर प्रभुपाद जी की कृपा से आज हर देश में कृष्ण नाम का प्रचार हो गया है ना। किसके लिए, किसके लिए साधु करते हैं, वो हमारे मंगल के लिए, दूसरे के मंगल के लिए। इसीलिए साधु का लक्षण बताते हैं क्या है, तो वो तितिक्षवा कारुणिका सिहिदम सर्वदेहिना अजात सत्र बहुशांत साधुनम साधुभूषणम। तितिक्षवा, एक साधु कैसे होते हैं, बहुत ही सहनशील होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, कितना हद तक सहनशील होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तृणाद अपि सुनिश्चयेन तरोर अपि सहिष्णुना, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील होते हैं साधु, ऐसा होना चाहिए, एक वृक्ष से भी सहनशील है, वृक्ष कितना सहन करता है, धूप है, ठंडी है, गर्मी है, कोई कोई आके उनके पत्ते निकाल लेते हैं, उनका फल निकालते हैं, उनको काट भी देते हैं तो भी वृक्ष कुछ नहीं बोलता है ना, कितना सहन करता है, तो साधु इस प्रकार से होते हैं, इतना सहनशील होते हैं, होना चाहिए ऐसा, बहुत मुश्किल है, होना बहुत मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, है ना, हो सकते हैं ना, हम लोग प्रयास करेंगे तो हो सकते हैं, है ना। हम भक्ति जो है ऐसा चीज है, उसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, बाकी चीज आप लोग उसको लाइटली लीजिए चलेगा, मगर भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए। अगर भक्ति किसी ने सीरियसली लिया है तो उसके पास ये सब गुण आ जाएगा, वो सहनशील बन ही जाएगा, कारुणिका, दूसरे के प्रति करुणा दिखाना, साधु दूसरे का करुणा, दूसरे के प्रति करुणा करते हैं, है ना, और तिथि सेवा कारुणिका सुहृदम सर्वो देहिना, सारे लोगों के प्रति सुहृदम, उनका हितेशी होते हैं। इस प्रकार हम अभी चर्चा किए कि प्रभुपाद जी कैसे हितेशी थे, और भक्त लोगों का यही काम है कि दूसरों का कैसे हित होएगा उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो अपने आप को इस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, अगर हम भक्त कहना चाहते हैं तो भक्त का गुण भी होना चाहिए साथ में, है ना, जिस प्रकार से ब्राह्मण बोलने से पहले ब्राह्मण का गुण और कर्म भी होना चाहिए, उस प्रकार भक्त कहने से पहले भक्त का भी गुण होना चाहिए, और क्या क्या है, सहनशील होना चाहिए, कारुणिका, दूसरे के प्रति करुणा होना चाहिए, कारुणिका श्रीदम सर्वदेहिना, सारे जीव के प्रति श्रीद और उनका हितेशी होना चाहिए, अजात शत्रु वो शांत, उनका कोई शत्रु है ही नहीं, साधु का कोई शत्रु नहीं है, क्या शत्रु होगा, बिजनेस में शत्रु हो सकते हैं, घर में शत्रु हो सकते हैं, बाहर दुनिया में शत्रु होते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि धन जन मान इसके लिए है ना, जब साधु का ना धनम ना जनम ना सुंदर ये सब है ही नहीं बोले तो उनके पास दूसरा चीज है ही क्या, ओके कि कौन उनका शत्रु बनेंगे। तो इस प्रकार से एक साधु को इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग हरिनाम का जितना जो जितना आम गहराई से जितना प्रेम पूर्वक और जितना भगवान को पुकारते हुए हृदय से हम लोग हरिनाम का उच्चारण करेंगे, हमारा हृदय उतना ही पवित्र होएगा, उतना ही निर्मल होएगा। चेत और दर्पण, चेत चित्त रूपी जो दर्पण है वो हरिनाम से साफ हो जाएगा। यहाँ पे एक शब्द है ना, क्या है वो, स्वस्ति वासना। स्वस्ति वासना नंद महाराज बताते हैं कि आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण सीक्रेटली धीरे से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए, और हम यहाँ पे उनका नाम संस्कार भी हो जाएगा वैदिक मंत्र। इसलिए हर शुभ कार्य में मंत्र का उच्चारण होता है। जिस प्रकार आप देखे रहेंगे हमारा मंदिर में भी जब दीक्षा कार्य होता है तो यहाँ पे ब्राह्मण बहुत सारे हवन करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कुछ नहीं तो खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण करते हैं, क्योंकि ना हरे कृष्ण महामंत्र सारे मंत्रों का राजा है। अगर हरे कृष्ण महामंत्र ले हम उच्चारण करेंगे, जिस प्रकार आप देखे रहेंगे प्रभुपाद जी का सन्यासी इनिशिएशन जब हो रहा था, मंत्र उच्चारण भी हो रहा था, साथ में प्रभुपाद जी एक भक्त उनका नाम क्या था, उनको उच्चारण कर रहे थे, आप महामंत्र का उच्चारण कीजिए, है ना, डंडा लेके बैठे हैं प्रभुपाद जी यज्ञ में, और बोल रहे थे आप मंत्र महामंत्र का उच्चारण करो। वो बेचारा भक्त थोड़ा संकोच कर रहा था, वहां पे यज्ञ चल रहा है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, फिर भी प्रभुपाद जी बोलते कि महामंत्र होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग भी कभी शुभ कार्य होता है तो हम लोग भी महामंत्रों का कीर्तन करते हैं, खास करके जब भगवान का आविर्भाव होता है ना, तो हम लोग महामंत्र का उच्चारण करते हैं। महामंत्र में इतना ताकत है, इतना ताकत है। अभी बता रहे थे ना कि एक चंडाल भी एक ब्राह्मण के स्तर तक आ सकता है अगर ये मंत्रों का उच्चारण करेगा। अहो बतो सो पतो गरियन, कपिल मुनि को बता रहे हैं माता देवती कि हे प्रभु उस व्यक्ति का क्या कहना जिसकी जीव के अग्रभाग में आपका नाम उच्चारण हो रहा है। अहो बतो सो पतो गरियन यद जीवाग्रे बरसंते नाम उद्यम ते पुष्ट पुष्टे जुहु सुनारिया ब्रह्मानुचरणान गृणानु ऐसे। वो चंडाल, वो कुत्ता खाने वाला भी व्यक्ति अगर अपने जीवा के अग्रभाग से हरिनाम का उच्चारण करेगा तो क्या कर लिया है वो सारा तपस्या, ते पुष्ट तपस्या, सारा तपस्या कर लिया उसने, ते पुष्ट तपस्या जुहु सारा हवन भी कर लिया उसने, सारा पवित्र नदियों में भी स्नान कर चुका है, यहाँ तक कि सारा ज्ञान का भी हासिल कर लिया अगर उसने हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करे तो। इस प्रकार से मंत्रों का इतना ताकत होता है। अगर हम प्रेम पूर्वक इसको बहुत ही गहराई से अगर सीरियसली लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में काबिल है, हमको भगवतधाम लेके जा सकता है, मगर विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास जितना दृढ़ हो सकता है उतना तीव्रता से हमारे अंदर ये जो कलमश दूर होएगा और हम भगवान का जो नाम का जो रुचि उत्पन्न होएगा। हमारा विश्वास नहीं होने के कारण हम ये हरि नाम को रुचि नहीं दिखाते हैं। एकादशी का कीर्तन होता है तो दो आदमी बैठे रहते हैं यहाँ पे, दो आदमी। कोई शादी होगा कितना लोग आते हैं, शादी होता है कहीं पे कितना लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। संकीर्तन में कितना लोग आते हैं, चार लोग पांच लोग, हमको फोन कर करके बुलाना पड़ता है, प्रभु जी आप 12 आवर्स कीर्तन है, आप आइए मंदिर में, कृपा कीजिए प्रभु जी। देखिए इस प्रकार हमको अनुरोध करना पड़ता है। यहाँ तक पता है सारे भक्तों को महामंत्र अपने आप में काबिल है और सब कुछ देगा, फिर भी हम अगर कीर्तन के लिए बुलाएंगे तो नहीं आते हैं। प्रभु जी कहाँ पे है ना, प्रभु जी मैं एक शादी में गया था नहीं आ पाया। शादी इंपॉर्टेंट है, भगवान का कीर्तन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए भक्ति में प्रगति नहीं होता है। हमारा विश्वास नहीं है ना, अगर विश्वास होता था हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ मिल जाता है तो हम कर सकते थे इसको, हरे कृष्ण महामंत्र को। विश्वास नहीं है, आपको पता रहेगा गौर गोविंद महाराज एक स्टोरी बताते हैं छोटा सा। एक बहू और एक सास कथा सुनने जाते थे, कथा में वो भागवत कर्ता जो साधु है, सॉरी लेट हो रहा है बस खत्म कर रहे हैं, वो साधु जो है वो 7 दिन का भागवत सप्ताह था तो इन्होंने रोज जाते थे सुनने के लिए। एक दिन वो भागवत सप्ताहकार बताया कि हरि नाम इतना शक्ति है, अगर हरि नाम को जो लेगा उसने भव सागर से पार हो जाएगा। आनंदे बोलो हरि हरि, हरि करीबे भवु पारी। अगर हरि नाम को अगर आनंद से प्रेम पूर्वक कोई उच्चारण करेगा, ये हरि नाम उसको भव सागर से पार कर लेगा। कई लोग आते थे सुनने के लिए, एक गांव से सास बहू भी सुनते थे, मगर सास बहू सुने कथा खत्म हुआ, ये जो बहू था बहुत ही सीरियसली लिया ये बात को,
अरे हरि नाम हमको भवसागर से पार कर देगा। अरे वाह कितना ताकत है इनके पास, तो तुरंत शुरू कर दिया। यही वही भागवत कथा से जप माला लिया, जप करना शुरू कर लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हाँ और शुरू कर दिया। ये जो सास बहू आते थे वो दूसरे गांव से आते थे, और बीच में एक छोटा सा नदी हुआ करता था, वो नदी को पार करके आना रहता था, उसमें पानी नहीं रहता था, कभी कभार बाहर आता था तो पानी थोड़ा भर जाता था यहाँ तक गले तक। तो उसी दिन जिसी दिन ये हरिनाम का चर्चा हुआ उसी दिन क्या हुआ, जब लौटते वक्त उस नदी में बाढ़ आ चुका था, यहाँ तक पानी आ चुका था। तो ये बहुत मस्त था हरे कृष्ण महामंत्र में, उसने सुन लिया था ये तो हरे कृष्ण महामंत्र भाव सागर को पार कर देगा, तो ये नदी क्या चीज है ना। उसने हरे कृष्ण महामंत्र जपते 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 पार कर लिया, और ये सास जो है बीच नदी में डूब डुबा रहा है। अरे गया अभी बोले, अरे बहू क्या कर रहा है, मुझे छोड़ के कहां चले गई तू, मैं बीच में डूब जाऊंगा। तो बोले बहू बोलते हैं कि अरे माता आप अभी सुने नहीं हो साधु महाराज क्या बोले, हरि नाम लोगे तो ये भव सागर से ऐसे पार हो जाओगे, ये नदी किस चीज का है, देखो मैं कितना मस्त आ गया इधर, है एकदम आराम से आ गया ना, तो आप हरि नाम लीजिए। तो बहू बोलते तू मुझे सिखाएगी, तू आज का बहू है, हम बोलते ना तू आज का छोकर तू क्या मुझे बताएगा। तो इस प्रकार से बोली हो और उसका विश्वास नहीं था हरि नाम के प्रति, और उस नदी में वो डूब के मर गए। इस बहू ने जप करते करते इसका उदाहरण इससे इसके लिए बताया कि हरि नाम के पास सारा ताकत है। हम कहीं घटना देखते हैं भक्तों के जीवन में, भक्त लोग इतना बड़ा दुर्घटना हुआ और बच गया, शुद्ध सेवकों के बारे में सोचिए, बाइक एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी प्रभु जी को कुछ भी नहीं हुआ, डांस भी करते हैं, कराटे भी खेलते हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि हरि नाम इतना ताकत है। इसीलिए अगर हरि नाम को प्रेम पूर्वक लेंगे तो हम हर दुर्घटना से बच सकते हैं। वो तो बाहर का दुर्घटना छोड़ो, भक्ति में जो भी बाधा आएगा उससे भी बच जाएंगे अगर हरि नाम को सीरियसली लेते रहेंगे तो। इसीलिए यहाँ पे नंद महाराज बता रहे हैं कि स्वस्ति वातना पूर्वक हम, आप वेदों का मंत्र उच्चारण कीजिए और हम गुप्त रूप से कृष्ण बलराम का नामकरण कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ तक कि आज मैं गौशालों को बंद करता हूँ, लॉक मारता हूँ, कोई आदमी नहीं आ सकता यहाँ पे, जो गौशाला में काम करने के लिए आते थे उन लोग को भी मैं एंट्री नहीं दूंगा आज, तो हम लोग सीक्रेटली कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में नंद महाराज बोलते हैं, फिर आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे कैसे गर्ग मुनि ने भगवान का कृष्ण और बलराम का नामकरण करते हैं। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिए थोड़ा लेट हो गया, प्रश्न का तो कोई बात ही नहीं है, अगर किसी को कुछ टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं। हाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, बनमाली बाबू जी हैं, कमल लगन बाबू जी हैं, कुंडल कृष्णा बाबू जी हैं, तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट दे सकते हैं जिंदा बताइए बोल। वैदिक भक्ति मीन्स विधि विधानों का पालन करते हुए भक्ति करना, वैदिक भक्ति साधन साधन भक्ति में आता है वैदिक भक्ति, उसके ऊपर है क्या है भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, वो बहुत ऊंचा स्तर है। मगर वैदिक भक्ति में क्या है, हम लोग को सारे रूल्स रेगुलेशन को पालन करना पड़ेगा, जैसे कि नाम उच्चारण करते वक्त 10 नाम प्रधान लोग सुबह बोलते हैं उसको ध्यान से रखते हुए नाम उच्चारण करेंगे, जिस प्रकार आश्रम में रहने के लिए कुछ ये रूल्स पालन करना पड़ता है, मंदिर में आने से पहले पैर धोना है ना, और घंट बजाना, ये सब रूल्स है ना, चरणामृत लेने के बाद हाथ धोना, उसको सर पे लगाना, मंदिर का परिक्रमा करना, ये सब विधि है जो 64 विधि बताया गया, तो ये विधि विधान है और उसको वैदिक भक्ति बताया। और किसी का कुछ जो भाव भाव स्तर में आ जाता है वो उसका आदत ही हो जाता है नियमों का पालन करना, उसको ऊपर से प्रयास करना नहीं पड़ता है, विधि भक्ति में हमको प्रयास करना पड़ता है। हाँ मंगलारती उठने के लिए टेंपल कमांडर आके डंडा मार के उठाना पड़ता है कि उठिए प्रभु जी टाइम हो गया करके, है ना। मगर जब भाव भक्ति भाव के स्तर पे आ जाएंगे तभी हमको ऐसे ही हम लोग उठ जाएंगे, 3:30 बजे का तो हमको नींद खुली जाएगा और अपने आप जपा ऐसे 64 राउंड हो ही जाएगा, उसके लिए हमको पीछे से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। मगर वैदिक भक्ति स्तर पे हमको प्रयास करना पड़ता है, विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा।
अपना
इसके बारे में तो कमल अर्जुन को बता सकते हैं, हमको उतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, प्रभु जी ब्रह्मचारी क्लास में बताए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की गौर हरि प्रेमानंदे सारे वैष्णव भक्त वृंद की।
पर नहीं रहते हैं तो ये जाने लगा वो देखता है।